Gopijana Vallabha Girivara Dhari Gopijana Vallabha Girivara Dhari Gopijana Vallabha Girivara Dhari Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda Yamuna Tira Tira Vana Chari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari
Gopi Jana Vallabha
Vallabha Girivara Dhari
Gopijana Vallabha
Yashoda Nandana Vraja Janaranjana
Yashoda Nandana
Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Radha Madhava
Divine grace. ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद के, श्री श्री राधा गोविंद देव के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, श्री श्री पंच तत्व के, श्री श्री यशोद दामोदर के, श्री श्री गिरिराज गोवर्धन के, हिताय गौर प्रेमानंदे All Buddhists to assemble devotees, all Buddhists to assemble devotees, all Buddhists to assemble devotees, all Buddhists to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, गिरिराज गोवर्धन पूजा है और रसिकानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि है। तो हम थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे गिरिराज गोवर्धन के प्राकट्य के बारे में, लीला के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे टाइम के अभाव के कारण। तो श्रील प्रभुपाद हमें अपने जो भी मॉर्निंग प्रोग्राम है उसमें रोज गिरिराज गोवर्धन का स्मरण दिलाते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने का मौका प्रदान करते हैं। प्रेम ध्वनि में भी हम गिरिराज गोवर्धन का वर्णन करते हैं। इसके अलावा जब हम राधा माधव जो वृंदावन को एक प्रकार से प्रकाशित करता है, जो गीत भक्ति विनोद ठाकुर का, उसमें भी गिरिराज का वर्णन आता है। तो वास्तव में गिरिराज का आश्रय ग्रहण करने से गिरिधारी जो कृष्ण हैं उनकी प्राप्ति संभव है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा बचपन में कई सारे नाम थे, एक नाम था नंदू, एक था कचोरी मुखी, अभय तो उनका ऑफिशियल नाम है अभय चरण दे, लेकिन एक था गोवर्धन प्रभुपाद का नाम। तो प्रभुपाद कहते थे मेरे जो मित्र थे वे मुझे पूरा नाम नहीं बोलते थे गोवर्धन, वो कहते थे गोवर। प्रभुपाद ये हरिशौरी प्रभु को ट्रांसेंडेंटल डायरी में वो हरिशौरी प्रभु वर्णन करते हैं। एक बार प्रभुपाद इस बात को बता रहे थे। तो ये जो गोवर्धन है ये जिस प्रकार से श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नायान्य चैतन्य महाप्रभु वो पर्सनैलिटी है जो साक्षात राधा और कृष्ण के मिलित विग्रह हैं, मिलित रूप हैं, तो उसी प्रकार से कृष्ण भी गोवर्धन के रूप में प्रकट होते हैं। वैसे कृष्ण की अनुकंपा है बद्ध जीवों के प्रति, जिस प्रकार से कृष्ण सदैव प्रयास करते रहते हैं कि इस बद्ध शिवों को कैसे वापस ले जाया जाए। उसके लिए कृष्ण जितना एंडेवर करते हैं इस संसार में और कोई नहीं करता वापस हमें ले जाने के लिए, लेकिन हम इतने मंद बुद्धि के हैं मत और इतने नीच हैं कि कृष्ण का ये जो प्रयास है उसके बारे में यदि हम सोचे तो तुरंत हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। केवल इस चीज को हम यदि सूक्ष्मता से विचार करें कि कृष्ण का जो लव है इन जीवों के प्रति या प्रेम है उनकी अनुकंपा है वो कितनी अधिक है। कल हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे तो हम थोड़ा सा आगे निकल आए राधापुर के वहां, तो वहां जहाँ चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, चैतन्य महाप्रभु का बैठक है, तो वहां कई सारे पेंटिंग्स लगाए हुए हैं बहुत सुंदर सुंदर, किसी जगह आपको वो पेंटिंग्स नहीं मिलेंगे। तो वहां एक पेंटिंग था जिसके बारे में मैं सोच रहा था, वहां चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के शरीर को अपनी गोद में लिए हुए हैं और महाप्रभु रोते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इतना भी कोई प्रेम कर सकता है, मतलब भक्त बनना कितना वंडरफुल कार्य है, फिर भी हम इतने दयनीय निकृष्ट हैं कि भक्त बनने के लिए भक्ति करने के लिए सदैव उत्साहित नहीं रहते, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं किस प्रकार से भक्तिमय कार्यों से दूर रहो। तो इस प्रकार से कृष्ण चाहे वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, स्वयं परम भगवान आते हैं, या कभी वृक्ष के रूप में तुलसी महारानी के रूप में आते हैं, कभी नदी के रूप में कृष्ण से अभिन्न है गंगा, और कभी पहाड़ के रूप में गोवर्धन के रूप में आते हैं। तो ये सारे कृष्ण के प्रयास हैं। कृष्ण बहुत अधिक तत्पर है, बहुत ईगर है हमें वापस ले जाने के लिए, अपना आलिंगन प्रदान करने के लिए, लेकिन हमारी स्थिति बहुत गई गुजरी है, हम कृष्ण के इस प्रयासों को देखते नहीं हैं, अनुभव नहीं करते हैं और कृतज्ञता को व्यक्त नहीं करते हैं। तो वैसे ही कृष्ण प्रकट होते हैं इस गिरिराज गोवर्धन के रूप में। सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में वर्णन करते हैं, वो कहते हैं गोवर्धनो जयति शैल कुलाधिराजो ये गोपिकाभिर्वरितो हरिदास वर्या कृष्णेन शक्रमक भंग कृतार्चितोयम् सप्ताहमशकर पद्मतले पिवसित। वो कहते गोवर्धनो जयति शैल कुलाधिराजो, सनातन गोस्वामी कहते गोवर्धन की जय हो जो शैल कुलाधिराजो, सारे जो ये शैल हैं माउंटेन्स हैं उनमें किंग हैं कुलाधिराजो, यह गोपिकाभिर्वदितो हरिदास वर्या। और ऐसे ये जो कुलाधिराजा हैं हरिदास जो गोवर्धन है उनका गुणगान स्वयं गोपिकाएं अपने मुख से करती हैं। आप सोचो कितना ग्लोरी है, कोई बड़ा व्यक्ति किसी के बारे में बोले तो कितना उस चीज का इम्पोर्टेंस है। तो गोपिकाएं वो कहती हैं ये गोपिका अभिरवदितो हरिदास वर्य, गोपिकाएं कहती हैं कि ये जो गिरिराज है ये कौन है, हरिदास वर्य। कृष्णेन शक्तमक भंग कृतार्चितोयम्, कृष्ण ने इंद्र का जो यज्ञ है उसको भंग किया था और इनकी जो पूजा है वो करने के लिए सारे ब्रजवासियों को प्रेरित किया था। सप्ताहमश कर पद्म तले भी अवस्थित, सप्ताहमश एक सप्ताह के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक वीक के लिए कृष्ण ने क्या किया था, कर पद्म तले भी अवस्थित, कृष्ण ने अपने चरण कमलों पर या छोटे से उंगली पर इनको धारण किया था। इतना अधिक कृष्ण का स्नेह है, जैसे कि इसमें वर्णन आता है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, वैकुंठा जनितो वरा मधुपरी तत्रापि रासोत्सवात्, वृंदारण्य मुदार पानी, पानी का मतलब है हाथ, वृंदारण्य मुदार पानी रमना तत्रापि गोवर्धना। तो भगवान ने उदार पानी रमना, रमन मतलब बहुत सारे लीलाएं विलास, हाँ, तो भगवान कृष्ण ने वृंदावन से भी ये गिरिराज के अधिक ग्लोरीज हैं, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों में इसको धारण किया था। हाँ, उदार पानी रमनाथ, बहुत सारे रमन और उनकी जो क्रीड़ाएं हैं गोपिकाओं के संग में, हाँ, ग्वाल बालों के संग में कृष्ण ने प्रदर्शित किए थे। इस प्रकार से सारे आचार्य गण कृष्ण से लेकर इस परंपरा के जो आचार्य हैं वो गिरिराज गोवर्धन की महिमा का गुणगान करते हैं। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि पूर्ण रूपेण गिरिराज की महिमा का वर्णन करने का सामर्थ्य रख सकता है। कहते कि इवन ये जो गोवर्धन लीला, कृष्ण का उस गोवर्धन को उठाना इतना महिमा मंडित है कि ये जो अनंत शेष अनंत जीवन भर वो वर्णन करते रहे फिर भी पूर्ण रूपेण उसका वर्णन करना उनके लिए भी असंभव है। ये गिरिराज की जो लीलाएं हैं, एक प्रकार से कृष्ण गिरिराज को धारण करते हैं और अपना जो प्रीति है जीवों के प्रति या भक्तों के प्रति जो उदारता है वो दिखाते हैं। धारण करना मीन्स वर्णन उठाना। इस संसार में व्यक्ति परिवार आदि के लिए कितनी चीजों के लिए बर्डन उठाता है कि नहीं अपने सर में, वो प्रेम का बर्डन है। वैसे ही कृष्ण एक प्रकार से इतने विशाल बर्डन को उठाए हुए हैं किस किन को? आनंद प्रदान करने के लिए, केवल ब्रजवासियों को। कृष्ण ब्रजवासियों से सर्वाधिक प्रीति रखते हैं, इसलिए सत्यव्रत मुनि कहते इति दृक्स्व लीलाभिर आनंद कुंडे सो घोषम। सो घोषम मीन्स वृंदावन, सो घोषम मीन्स अपना अपने डिवोटी संघ, भक्तों का जो संघ है, ब्रजवासियों का जो संघ है। इति दृक्स्व लीलाभिर आनंद कुंडे, ये जो आनंद का कुंड है, सरोवर है, उसमें कृष्ण सदैव अपने भक्तों को डुबो देते हैं, ब्रजजनों को, ब्रजवासियों को। इति दृक्स्व लीलाभिर आनंद कुंडे सोहोषम निमज्जान्तम आख्यापयन्तम, निमग्न कर देते हैं। कृष्ण का कोई और दूसरा कार्य नहीं है। कृष्ण का कार्य क्या है? केवल एक ही उनका बिजनेस है, कैसे मैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करूं। कृष्ण की यही चेतना है, कृष्ण कुछ और सोचते नहीं है, उसी प्रकार की चेतना उनके भक्तों की है। भक्त भी इस पर्दा में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से मैं सर्वाधिक आनंद कृष्ण को प्रदान करूं। ये दोनों का ओढ़ लगा रहता है। जैसे चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में वर्णन आता है, गोपिकाएं अपना वस्त्र धारण करती है, श्रृंगार आदि करती है, यह सब कुछ केवल कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए। वो कृष्ण के सामने जाती है, कृष्ण का आनंद द्विगुणित हो जाता है और बढ़ता है। और वो देखती है कि कृष्ण का आनंद बढ़ रहा है, कृष्ण सुख की अनुभूति कर रहे हैं, उनको देखकर इनका जो आनंद है वो और बढ़ता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे को दिव्य आनंद प्रदान करने की स्पर्धा है भगवान में और उनके जो भक्त हैं। हाँ, यही वास्तव में वृंदावन है। वृंदावन की भावना को लाने का कार्य आध्यात्मिक गुरु करते हैं। क्योंकि हमारा भाव क्या है? भोग भाव। कौन सी भावना में है हम अभी? कृष्ण भावना नहीं, कृष्ण भाव नहीं, भोग भाव में है। सदैव एक ही विचारों में मग्न रहते हैं, भोग करने की भावना में। लेकिन आध्यात्मिक गुरु वो है, प्रामाणिक गुरु वो है, या जो गुरु इस बद्ध जीवों के भोग भाव को सेवा भाव में कन्वर्ट करने का सामर्थ्य रखता है वो वास्तव में प्रामाणिक गुरु है। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद में, श्रील प्रभुपाद ने संसार के सारे जीवों में भोग करने की भावना तुष्ट उसके भरी हुई है। उनको क्या किया? उन्होंने कन्वर्ट किया, और वो क्या है? सेवा भाव। और वो सेवा भाव ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट है इसका, ब्रज का। ब्रज उस पर टिका हुआ है, और किसी वस्तु पर ब्रज नहीं है। उस चीज को हटाओ तो ब्रज खुल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उनके सेवा के जो प्रमुख केंद्र कौन है? कृष्ण है। इसलिए कृष्ण ये सब चीजें प्रदान करते हैं। तुलसी महारानी देते हैं, गंगा देते हैं, भागवतम देते हैं, हरिनाम प्रदान करते हैं, गिरिराज जैसा माउंटेन प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भोग भावना है, इसको हम कन्वर्ट कर पाए सर्विस सेवा की भावना में। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो गोवर्धन, हाँ गोवर्धन, गो मतलब इंद्रिया भी है, गो मतलब गाय भी है, वर्धन मीन्स बढ़ाना, तो गोवर्धन का कुछ और कार्य नहीं है। गोवर्धन केवल उसी के लिए वहां है, वो सदैव एक ही विचार में लिप्त रहते हैं वर्धन कराने में। किसका वर्धन? भगवान का, भगवान के आनंद का वर्धन, और भगवान के जो भक्त हैं उनका वर्धन करना, उनके आनंद का वर्धन करना। गोमिस गाय, गाय भी भगवान को प्रिय है, और उनके आनंद का वो वर्धन करते हैं, बढ़ाते हैं। उनका दूसरा कोई बिजनेस नहीं है। और वास्तव में एक जीव एको बहुशाम, जीव की उत्पत्ति केवल इसी के लिए हुई है, कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए। और हमारे हमारे आनंद प्राप्ति की जो लालसा है उसकी तृप्ति इसी में है कि हम सदैव भगवान और भक्तों को सेवा के माध्यम से आनंद प्रदान करें। जैसे प्रभुपाद ने कहा कि जैसे हम शीशा में देखते हैं अपना जो प्रतिबिंब है, और उसको हम तिलक लगाने का प्रयास करें, वस्त्र पहनाने का प्रयास करें, हाँ तो वह असंभव है। लेकिन यदि मूल रूप को डेकोरेट किया जाए तो वो पूर्ण हो सकता है, हाँ एक प्रकार से उचित है। तो नेचुरली प्रतिबिंब में भी वो सारी चीजें उपस्थित हो सकती हैं। तो उसी प्रकार से हमारा अस्तित्व इसी में है कि हम सदैव कृष्ण या उनके जो भक्त हैं, हम उनसे संबंधित जो हैं, उनको आनंद प्रदान करने का प्रयास करें अपनी सेवा के माध्यम से। उसी में हमारी पूर्णता है, हाँ। और तभी हम कृष्ण के प्रति जो नित्य सिद्ध प्रेम है हमारे हृदय में, उसको उजागर कर सकते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सार्थक बुनाए श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराए उदय। तो श्रवण बहुत इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है। कल मैं प्रभुपाद का कन्वर सेशन पढ़ रहा था वृंदावन से आते आते, तो प्रभुपाद के डिसाइपल प्रभुपाद बता रहे थे उसमें कि कितना महत्वपूर्ण है। सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, इस श्लोक को उद्धृत करते हुए प्रभुपाद ने कहा कि ये जो श्रवणम है, चाहे हमें समझ में आए या ना भी आए, ये आध्यात्मिक चर्चा इतनी शक्तिशाली है कि इस श्रवणम का पहला इंस्टॉलमेंट प्रभुपाद कहते क्या है कि आप पायस हो जाओगे, पुण्यवान हो जाओगे। इनफ है, आपको समझ में आ रहा है, आपके सर के ऊपर से जा रहा है, जो मर्जी हो रहा है, जो भाषा यूज की जा रही है, लेकिन आप केवल इसको सुनते हैं, उपस्थित होते हैं, तो प्रभुपाद कहते फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है कि आप पायस हो जाओगे। तो शिष्य कहता है लेकिन प्रभुपाद हम तो क्लास में बैठते लेकिन अटेंशन नहीं होता, हम तो अपनी क्लास में मग्न रहते हैं, यहाँ बैठे हैं लेकिन अपने अलग अलग चीजों में अपने दिमाग मन हृदय को भगाते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा नेक्स्ट है कि अटेंशन दो। और वास्तव में अट्रैक्शन टू अफेक्शन है कि नहीं, अट्रैक्शन से क्या होगा, अफेक्शन कन्वर्ट हो सकता है। यदि हमारे पास, क्योंकि हमारे सबके हृदय में कृष्ण के लिए थोड़ा सा अट्रैक्शन है, लेकिन नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है अंदर, तो अट्रैक्शन जो ये अट्रैक्शन है इसमें हम एक एक इंग्रेडिएंट ऐड करते जाए तो परफेक्शन को प्राप्त करेंगे। अट्रैक्शन है उसमें क्या डालो, फिर अटेंशन दे दो। हम कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण है, उसमें क्या डालो, थोड़ा सा कृष्ण के लिए अटेंटिव हो जाओ। श्रवण करने की थोड़ी सी इच्छा है, लेकिन उसमें और एक चीज क्या एक डालो कि थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ। तो अटेंटिव होंगे तो हमारा क्या होगा, हम अटेंटिव होने से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, निमग्न हो जाएंगे, और जैसे निमग्नता आएगी तो निमग्नता से अटैचमेंट, स्ट्रांग अटैचमेंट डेवलप होता है और वो अटैचमेंट ही फाइनली अफेक्शन में परिवर्तित होता है। तो इसलिए ये सिक्वेंस है श्रवणम का, अट्रैक्शन है। इसलिए कहा कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब होना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। यदि आप गांव में गए हो तो कई बार जो हैंडपंप होते हैं तो जैसे राजस्थान आदि में तो उसमें पानी नहीं आता, पानी बहुत नीचे होता है। अब पानी लाने जाना है तो आपको क्या करना होगा, आपने बकेट भर के ले जाने पड़ेगी पहले और जाकर उसमें डालो, फिर क्या होगा जो गैप एयर का गैप बना है वो खत्म हो जाएगा और फिर सरलता से अनलिमिटेड पानी बाहर आने लगेगा। तो वैसे श्रवण है, अभी ये गैप हो गया है तो अभी पहले श्रवण करो, डालो इसमें पानी और फिर स्वाभाविक जो कृष्ण के लिए आकर्षण है, श्रवण करने की जो एगरनेस है, प्रगाढ़ता है, वो डेवलप होगी। तो इसलिए हिमानी गिरिराज कथा गोपिकाएं भी सुनने के लिए लालायित रहती है गिरिराज के बारे में, बल्कि भगवान के बारे में सुनने में इतना उत्साह नहीं है। भगवान के जो भक्त हैं गिरिराज हैं उसके बारे में सुनने के लिए उनको बहुत लालसा है। तो श्रीमती राधा रानी वर्णन करती हैं गिरिराज की महिमा का। तो मैं थोड़ी देर के लिए वो पास टाइम बताता हूँ कि किस प्रकार से गिरिराज प्रकट होते हैं, चाहे आध्यात्मिक जगत में चाहे इस भौतिक जगत में। तो एक बार बरसाना में श्रीमती राधिका जो वृषभानु महाराज का जो महल है उसमें बैठी थी, सुबह का समय था और बहुत दुखी थी, कृष्ण के प्रति जो तीव्र विरह है उसको अनुभव कर रहे थे। और सारी गोपिकाएं अष्ट सखी वृंद उनके आसपास आते हैं और उठते ही उनके हृदय दुख से भर जाता है। जैसे हम कभी कभी दुखी हो जाते, उठते ही दुख शुरू हो जाता है, आँख खुलते भौतिक जगत का ये स्वभाव है। सोने के लिए जाते हैं तो दुख भरी नींद आती है। तो श्रीमती राधिका उठते ही सोचने लगी कृष्ण के बारे में। तो हमें भी उठते ही सोचना चाहिए कृष्ण बहुत दयालु है, देखो मुझे आज का भी दिन दे दिया है कृष्ण ने कि बेटा आज भी क्या करो, कृष्ण भावना को जागृत करो, आज पूरा दिन तुम्हारे पास है, पता नहीं कल का दिन अवेलेबल है या नहीं है। इस भावना से, उत्साह से उठ जाना चाहिए। और तो श्रीमती राधिका उठी, उनका जो हृदय है दुख से भरा हुआ था और एक ही दुख था, क्या? कृष्ण प्राप्ति। कृष्ण कैसे प्राप्ति हो मुझे, और वास्तव में हमारे लिए हमारा मृत्यु क्या है? कृष्ण विस्मृति, रूप गोस्वामी कहते हैं भक्त के लिए मृत्यु है कृष्ण का विस्मरण हो रहा, विस्मरण हो जाना, और हमारे लाइफ है कृष्ण का सदैव स्मरण होना, यह हमारा जीवन है कृष्ण का स्मरण। श्रीमती राधिका इस विरह में थी तो वह सदैव उठी और बहुत दुख उन्होंने उठते ही कृष्ण का तीव्र स्मरण हो उठा, उनको रोने लगी और सॉफ्टली हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारी गोपिकाएं उनके इस कार्य को देखकर आश्चर्य व्यक्त करने लगी। उठते ही क्या है, कृष्ण नाम किबा की शयने की भोजने किबा जागरणे अहर्निशः बलह कृष्ण बलह बदने। हाँ, वृंदावन दास ठाकुर कहते कि शयने की भोजने, क्या सोते समय, क्या जागते समय, क्या बातें करते समय, अहर्निश अहर्निश दिन, निश मीन्स रात्रि, अहर्निशः बलह कृष्ण, चाहे दिवा हो या रात्रि हो, दिवस हो, क्या करो, कृष्ण नाम, कृष्ण का वर्णन करो, कृष्ण के गुणों को गाते रहो। जैसे माता यशोदा है, वो जब वो मंथन कर रहे थे दही मंथन दामोदर लीला में, तो भी उनका मन, उनका शरीर, उनका वाणी तीनों कृष्ण स्मरण से निमग्न था। मन से वो सोच रही थी मक्खन आएगा अच्छा उसको मैं कृष्ण को खिलाऊंगी, वाणी से वो कृष्ण के गुणों को गा रही थी और शरीर से स्लेबर कष्ट भी कर रही थी, उसको मंथन कर रही थी। तो वैसे ही श्रीमती राधिका सुबह उठती है और कृष्ण के विरह में रोदन करती हैं, कृष्ण के नाम का उच्चारण करती हैं और अपने महल का जो विंडो है वहां से बाहर देखती हैं। कृष्ण प्राप्ति के कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहे थे और वो देखा कि कृष्ण प्राप्ति के कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहे, दूर दूर से ब्रज की जो लैंड है आप बरसाना के ऊपर जाएंगे तो कितना मनोहर दिखता है ब्रज भूमि है ना सुबह के समय में। अब जल्दी जल्दी सुबह वहां बरसाना के ऊपर होते हैं तो आप देखेंगे ब्रज के सारे गांव को। तो वहां से श्रीमती राधिका महल से अपने विंडो से देख रहे थे, दूर से उनको दिखाई दिया, क्या दिखाई देगा, शैल कुलाधिराजो, शैल ये माउंटेन दिखाई दिया, गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन की जय। तो गिरिराज का उनको जैसे दर्शन हुआ तो उनको थोड़ा सा वो आया कि हाँ होप, क्या कहेंगे उसको, आशा है कृष्ण प्राप्ति की, क्या है कुछ तो होप है आशा है। मैं सारे निराश होकर बैठे थे लेकिन जैसे ही कृष्ण के महान भक्त को देखा तो वैसे उनके हृदय में भावना उजागर हो उठी कि हाँ कृष्ण मिला, कृष्ण प्राप्ति संभव है, जा है ते कि यहाँ कृष्ण की प्राप्ति संभव है। तो फिर उन्होंने जैसे उनकी ओर देखा और वो एक चीज सोचने लगी कि मैं तो एक क्या कहते हैं वामन, वामन मीन्स छोटा ना, बटू क्या कहते हैं हिंदी, बटू ब्राह्मण, छोटा सा हूं, छोटे सी हूं लेकिन मैं चांद को पकड़ने की बातें कर रही हूँ, चांद को अपना बनाना चाह रही हूँ। तो उन्होंने कहा ये कैसे संभव है कि मैं, हमारी स्थिति भी वैसे ही है, हम इतने छोटे से हैं, बालाग्र शत भागश शतधा कल्पित शत, बाल के अग्र भाग के 10,000 के छोटे सा हिस्सा है और कृष्ण जो विभू है अनंत है उनकी प्राप्ति की अभिलाषा हम रखते हैं। तो श्रीमती राधिका कहती है कि ये कैसे संभव है, तो वो सखियों को कहती कि बताओ कि ये इजी नहीं है कृष्ण प्राप्ति अपने जीवन में, ये बहुत बड़ा मिशन है कृष्ण प्राप्ति करना, क्या है छोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है लाइफ का। फिर वो गोपियों को कहती है कि ये कैसे संभव हो सकता है, वो कहती कि नंद महाराज के जो पुत्र है उनका जो संग है उसका लाभ तभी संभव है जब किसी महान भक्त का शेल्टर में यदि लेने से उनकी प्राप्ति हो सकती है। तो आचार्यगण कहते कृष्ण अनुग्रह बिना महत अनुग्रह नास्ती, महत अनुग्रह के बिना कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना असंभव है। कहते ना पाये भक्ति लता बीज, क्या है उसकी शुरुआत, गुरु कृष्ण प्रसाद पाये भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण की कृपा। तो वैसे ही श्रीमती राधिका ने कहा कि महान भक्त की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा असंभव है, यश प्रसाद भगवत प्रसादो। तो फिर श्रीमती राधा रानी कहती कि हे सखियों आप मुझे बताओ उपाय कृष्ण प्राप्ति का, कौन है कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट भक्त, महत महाद्वारम आहुर विमुक्त है, महात्माओं की सेवा से मोक्ष द्वारम अपावृता, मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं, महत्पादर जो अभिषेकम, जैसे रघुगण कहते हैं राजा रघुगण को कहा जाता है, वो कहे उनको उपदेश देते हुए कपिल देव कहते हैं, कपिल देव जड़ भरत कहते हैं महत पादो रजोभिषेक, महान व्यक्ति के चरण रज का अभिषेक किए बिना कृष्ण प्राप्ति असंभव है। तो उन्होंने सारे सखियों को पूछा कि आप बताइए कि कौन है सर्वोत्कृष्ट हरि भक्त। तो कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहा था। श्रीमती राधा रानी ने कहा कि मैंने गर्ग मुनि से सुना था, एक बार कृष्ण कथा सुनी थी जिसमें गर्गाचार्य ने कहा था कि गिरेंद्र एव मुख्य गिरे इंद्र, इंद्र मीन्स राजा, गिरे मीन्स माउंटेन। तो ये जो गिरिराज है वो सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, जिन्होंने सारे ब्रज जनों को इंद्र कोप से वास्तव में बचाया था। तो इस प्रकार से जब ये इनका डिस्कशन शुरू हुआ आपस में सब गोपिकाओं के बीच में, कौन चर्चा के विषय कौन थे, गिरिराज गोवर्धन थे। तो इस प्रकार से गिरिराज के महिमा का वर्णन करने लगी हर गोपिका, हर एक को ये अपॉर्चुनिटी थी गिरिराज के ग्लोरीज को बोलना, गान करना। तो फिर श्रीमती राधिका ने ये श्लोक बोला, अपना जो राइट हैंड है वो गिरिराज की ओर किया उस विंडो से, और उन्होंने कहा हंता यमद्रिरबला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तर्यो यत् पानीय सूयवस कंदर कंद मूले हैं। तो उन्होंने कहा हंत हंताय माद्रिरबला हरिदास वर्यो, कि ये है हरिदास वर्य। कौन है ये हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ है, ये जो गिरिराज गोवर्धन है। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, जो सदैव राम कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता कि जहां राम कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ, गोपिकाओं के साथ गिरिराज का आरोहण नहीं करते या जाते नहीं, और जाते हैं और सदैव गिरिराज का स्पर्श करते हैं। मानव तनोति सह गो गनयो, उनके जो गण हैं, उनके जो गायें हैं, इन सब की सेवा में गिरिराज तत्पर है, खड़े हैं सेवा में, तत्पर में खड़ा होना चाहिए नहीं, उत्साह के साथ। ऐसे नहीं कि गिरिराज सो रहे वहां लंबे छोड़े, सेवा का मतलब है आंखें खुली, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन और सदैव तत्पर। तो वैसे ही गिरिराज क्या है, वो नहीं सोचते कि मैं तो कृष्ण की सेवा के लिए हूं, मुझे ये पता नहीं ये गाय और उनके जो इन गोप सखाए हैं इनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा सीधा संबंध किससे है, कृष्ण से है बस, ऐसे नहीं। तो ये हरिदास वर्यों में जो वर्य है गिरिराज, ये कृष्ण की भगवान बलराम और उनके जो गोप सखाए हैं, गोपिकाएं हैं, गव्य हैं, क्योंकि ये तदीय वस्तु हैं, उनसे संबंधित हैं। भगवान जिनसे सर्वाधिक प्रीति रखते हैं उनकी सेवा से कृष्ण तुरंत उस भक्त की ओर आकृष्ट हो जाते हैं, तुरंत अपनी कृपा का दृष्टिपात प्रदान करते हैं। पानीय सूय वस कंदर कंद मूले, उनको जल प्रदान करते हैं, उनको कंदराय प्रदान करते हैं, उनको डिफरेंट प्रकार के फूल हैं, कलर्स हैं, गुफाएं हैं और पत्थर आदि हैं, ये सब प्रदान करते हैं कृष्ण को आनंद प्रदान देने के लिए, जो हरिदास वर्य गिरिराज हैं। तो जैसे ही ये श्लोक बोला श्रीमती राधिका ने, सारे गोपियों के हृदय में आदर का भावना जाग उठा, तुरंत उन्होंने हाथ ऐसे प्रणाम की मुद्रा में किए और गिरिराज को प्रणाम करने लगी दूर से ही, है कि नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से यहाँ आए थे गिरिराज में, तो कृष्णदास कविराज कहते हैं तबे चले आयला प्रभु सुमन सरोवर तहा गोवर्धन लेखी हईला विभल। तबे प्रभु चले आयला सुमन सरोवर, सुमन मीन्स कुसुम पुष्प। तो महाप्रभु चलते चलते कुसुम सरोवर में आए, तहा गोवर्धन देखी हईला विभल, उससे थोड़ा आगे जाते एक प्रकार से तो गोवर्धन शुरू हो जाता है। वहां से चैतन्य महाप्रभु ने गिरिराज गोवर्धन को देखा, देखने मात्र से चैतन्य महाप्रभु विवल हो उठे। गोवर्धन देखी प्रभु हईला दंडवत एक शिला लिंगिया हईला उन्मान। तो गोवर्धन को महाप्रभु ने देखा तो वो तुरंत देखते ही दंडवत प्रणाम किया और तुरंत गए गिरिराज की जो शिला है, इतनी बड़ी शिला, अब वो पेंटिंग देख सकते हैं, महाप्रभु शिला का आलिंगन कर रहे हैं। आलिंगिया हैला उन्मत, उसका आलिंगन करके महाप्रभु रोने लगे। और महाप्रभु की भावना क्या थी, ये जो शिला है, गिरिराज है, कृष्ण से अभिन्न है। जिस प्रकार से वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो दो रोल अदा करते हैं, एक भगवत और एक है भक्त। तो उसी प्रकार से गिरिराज कौन है, दोनों है, वो कृष्ण भी है और कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट भक्त है। हाँ, इसकी गवेषणा किन्होंने की है, गोपिकाओं ने की है, गोपियों में जो सर्वोत्कृष्ट है श्रीमती राधिका ने की है। नेत्र जले से शिला भिजे निरंतर, शिलार कहे न प्रभु कृष्ण कलेवर। और अपने आंखों से उनका आलिंगन करके महाप्रभु एक तो उन्मत्त हो जाते हैं, स्मरण करने लगते हैं गिरिराज के कार्यकलापों का, स्मरण मात्र से विफल हो जाता है क्योंकि इतना भरा हुआ है उनका हृदय उनके गुणों से, उनके कार्यकलापों से चैतन्य महाप्रभु का। तो गिरिराज का आलिंगन करते ही चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से जल की धारा बहने लगी और वो जो शिला है उसका अभिषेक हो रहा था, पंचामृत से नहीं, पंच गव्य आदि से नहीं, महाप्रभु का वो उससे बढ़कर है। एक भक्त के आंखों से अभिषेक हो जाता है शिला का, तो गोवर्धन आनंद अनुभव कर रहे थे। शिला र कहे न प्रभु कृष्ण कलेवर, ये जो शिला है गिरिराज है वो कृष्ण कलेवर, कलेवर में शरीर देह है, दिव्य देह है कृष्ण का। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की ये भावना है, चैतन्य महाप्रभु कभी भी गिरिराज के ऊपर अपना चरण नहीं डालते थे क्योंकि वो कहते थे कृष्ण कलेवर ये साक्षात कृष्ण है, इनको बहुत हल्का नहीं लेना चाहिए हमें, गिरिराज गोवर्धन को। तो इस प्रकार से जब ये श्रीमती राधिका से इन सब ने सुना तो सारी जो गोपिकाएं हैं वो बहुत आनंदित हो उठी और वो प्रणाम करने लगी। दूर से ही अलग अलग गोपियां इंदुलेखा चित्रा चंपकलता तुंग विद्या सुदेवी रंग देवी ये सारी गोपिकाएं प्रणाम कर रही थी और गुणगान कर रहे थे और वो कहते थे कि वास्तव में हरिदास हैं, भागवतम में तीन हरिदास हैं, एक है युधिष्ठिर, दूसरे है उद्धव और तीसरे कौन है, ये गिरिराज है। उनको हरिदास शब्द यूज किया है शुकदेव गोस्वामी ने, लेकिन जब गोवर्धन का नाम आता है तो विशेष रूप से श्रीमती राधिका हरिदास वर्य, हरिदासों में सर्वोत्कृष्ट, ये तुलना इस प्रकार से वो कहती हैं। और वास्तव में ब्रज का जो तिलक है वो गिरिराज गोवर्धन है। ऐसे गिरिराज को सदैव कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त होता था, जो लक्ष्मी सदैव लगी रहती है चरणों में, वो चरण स्पर्श गिरिराज को स्वयं कृष्ण जाते थे, अपना चरण स्पर्श प्रदान करते थे। और जैसे ही उनके चरण स्पर्श गोवर्धन प्राप्त करता है कृष्ण के, तो सारे अस्त सात्विक विकार इसमें आने लगते हैं, गिरिराज में प्रकट होने लगते हैं, उनके अश्रु बहने लगते हैं गिरिराज को। उनके अश्रु क्या है, झरने हैं, जो रेनफॉल्स हैं वो बहने लगते हैं और उनके रोमांच खड़े हो जाते हैं। रोमांच क्या है उनके लिए, जो घास आदि है, आचार्य कहते चरण स्पर्श, उनके चरणों का स्पर्श दो है, एक है चरण स्पर्श और दूसरा है आचरण स्पर्श। आचरण हम बोलते ना आचरण ठीक से करो, तो आचरण का मतलब है उनकी कार्यकलाप उनकी लीलाएं। तो भगवान के ये दोनों, उनके चरणों का स्पर्श भी और उनके लीलाओं का आचरण का स्पर्श भी गिरिराज गोवर्धन को प्राप्त होता था और जिसके द्वारा प्रमोदहा, उस श्लोक में वो कहते हैं प्रमोद का मतलब है आनंदित हो जाते थे, विवल हो उठते थे। तो ऐसे गोवर्धन, गो मीन्स गाय और वर्धन मीन्स बढ़ाते हैं सदैव, वो गायों का और भी विशेष रूप से ध्यान रखते थे। हाँ, क्योंकि ये कृष्ण की गायें हैं, कृष्ण के डिवोटीज हैं। कृष्ण कृष्णा अपने गायों के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, जिनके लिए आप टाइम देते हो इसका मतलब है वो पर्सन आपके लिए क्या है, अपने लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो वैसे ही है, हम कितना भागवतम के लिए टाइम दे रहे हैं, हरि नाम के लिए टाइम दे रहे हैं, डिवोटीज को टाइम दे रहे हैं, डीटीज को टाइम दे रहे हैं, सर्विसेज को टाइम दे रहे हैं, इसका मतलब वो चीज मेरे जीवन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना टाइम हम जिसको ज्यादा दे रहे हैं उसका मतलब हम उससे क्या करते हैं, विशेष लगाव है, अपेक्षण है, प्रेम रखते हैं। तो कृष्ण दिन भर कहा जाते थे गौवें चराने जाते थे, कितना टाइम अपना डिवोट करते थे गौओं को चराने के लिए। तो ऐसे गोवर्धन ऐसे नहीं कृष्ण 10-12 गाय लेकर निकल पड़ते थे, नहीं, सारी लाखों गांव गौओं को लेकर निकलते थे। माला, एक माला ही थी 108 मनियों की, क्योंकि 108 ग्रुप थे उनके गायों के, अलग अलग कलर के अनुसार अलग अलग फेसेस उनके होते थे, किसी का मृदंग रूपी फेस है, किसी का स्क्वेयर, ऐसे अलग अलग फेसेस थे। तो कृष्ण सदैव मेडिटेट करते थे, जप करते थे। तो गोवर्धन की कंदराओं में या गोवर्धन में ये गव्य अंदर निकलते थे चरने के लिए, तो अभी सोचो आगे 10-20 हजार गाय जाएंगे तो पिछले वाले उनको घास का रहेगा चरने के लिए। हाँ, एक तो उनके पाँव से वैसे ही हो जाएगा, गिर जाएगा, और वो सारी खाते जाएंगे तो पूरा छोटा छोटा हो जाएगा। लेकिन गिरिराज क्या करते थे, यही तो खासियत है गिरिराज गोवर्धन की, सेवा में कोई कमी नहीं। हाँ, जैसे अक्षय पात्र है, प्रसाद है ना द्रौपदी के पास, कभी जाओ प्रसाद हमेशा अवेलेबल है। तो वैसे ही गोवर्धन के पास कभी भी जाओ, चाहे गोपिकाएं जाती है या ग्वाल बाल जाते हैं, गौवे जाती है, कभी वो हतोत्साहित नहीं होते। ये डिवोटी का लक्षण है, उनको जो भी अप्रोच करेगा वो हतोत्साहित नहीं होगा, उनके उसके पास हमेशा हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जीव को कुछ ना कुछ देने के लिए है। तो वैसे गोवर्धन में जब गवे जाते थे, हाँ, तो पहले गाय खाते खाते जा रहे, तो घास चेतन है, घास उतना ही रहता था, सेम हाइट गाय खाने के बाद। यह आध्यात्मिक जगत है, जैसे यशोदा माता दामोदर लीला में वर्णन आता है कि वो जब कुकिंग करते थे, हाँ, उनको राइस बनाना होता था, तो अभी इस जगत में हम माताएं राइस किचन में रखती है तो बारंबार, अभी तो प्रेशर कुकर आ गए, पहले बिना प्रेशर के जब कुक करते थे राइस तो क्या होता था, ढक्कन बारंबार जाकर खोलना पड़ता था, देखते थे पक गया कि नहीं। माता यशोदा का वर्णन आता है कि आध्यात्मिक जगत में जब वो कृष्ण के लिए कुकिंग करती है तो उनको जाना नहीं पड़ता, चेक करने के लिए नहीं जाना पड़ता था, एक बार चूल्हे पर रख दिया राइस को, वो जाती थी गोपिकाओं के पास बाहर, बाहर जाकर कृष्ण कथा में निमग्न, कृष्ण का वर्णन हो रहा है, कृष्ण के कार्यकलापों की चर्चा करते रहते थे। और फिर वो बोलते थे, हे राइस तुम कुक गए हो क्या, पक गए हो कि नहीं, तो राइस कहते थे हाँ आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, तो माता यशोदा आते थे फिर उसको निकाल के रख देते थे। यह है आध्यात्मिक जगत, इसलिए ब्रह्मा जी कहते कथा गानम नाट्यम गमन अपी वंशी प्रिय सखी। हाँ, वहा जो बोलना है वो बोलना नहीं है, वहां क्या है वो गाना है, वहां चलना चलना नहीं है, वहां वो नृत्य है। तो ये आध्यात्मिक जगत जीवा जगत कृष्ण है उनके पास और हमें बुला रहे हैं, इसलिए कृष्ण ये सारी चीजें हमें प्रदान करते हैं। तो ऐसे जो गोवर्धन है सदैव कृष्ण की सेवा करते हैं और सारी आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जो गौड़िया वैष्णव हैं गोवर्धन को अप्रोच करते हैं महान भक्त के रूप में और उनकी कृपा प्राप्ति करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और जाते हैं, क्योंकि जो गोवर्धन है कृष्ण भक्ति प्रेम रस के भंडार है जो सबको उदारता से प्रदान करते हैं, इसलिए तो सब लोग जाते हैं परिक्रमाएं करने के लिए। हाँ, घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं। हाँ, क्यों घूमते हैं, क्योंकि वैसे हम घूम रहे हैं नाना योनि सदा फिरे कर दया भक्षण करे, अलग अलग योनि में हम यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुरण पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार वही माता वही उसका पेट और वही बाहर आते हैं, कितनी बार, अभी नहीं चाहिए, वास्तव में इसके लिए बहुत वो चाहिए, स्ट्रॉन्ग हमें डिसीजन लेना होगा, नहीं जाना है मुझे फिर से माँ के गर्भ में, फिर से जन्म लेना है। इसलिए सब जाते हैं गिरिराज की परिक्रमा में कि नहीं, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, बंधन है, इससे मुक्तता चाहिए। और वो कैसे, ये जो महान गिरिराज हैं उनकी कृपा को व्यक्ति प्राप्त करता है। हाँ, तो कृष्ण जो प्रेम है, कृष्ण भक्ति है, वो हृदय में स्थापित हो जाती है। हाँ, जैसे शास्त्र कहते हैं कि कई चीजें हैं जो वृंदावन का प्रेम प्रदान करती हैं। हाँ, उनमें से यमुना, हाँ, ललिता सखी और जो गोवर्धन है प्रमुख है। हाँ, पांच महानुभवों का वर्णन आता है, उनमें से ये तीन प्रमुख हैं गिरिराज, जिनमें सामर्थ्य है किसी को प्रेम देने के लिए। इसलिए दो प्रकार की कृपा है, एक है भगवत कृपा और दूसरी है भक्त की कृपा। हाँ, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, महत आश्रयम विना नैव मनोरथ फलति। महत आश्रय, हमारा मनोरथ तो बहुत बड़ा है। मनोरथ मीन्स डिजायर, मोरय अभिलाष विलास कुंज दिवास, मेरी अभिलाषा है, कहाँ निवास करूंगा, ब्रज में जाना है मुझे, वैकुंठ जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है, सुबह सुबह रोज गाते रहते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, ये हमारा मनोरथ है, ये हमारे हृदय की स्वाभिष्ट लालसा है, तो इसकी पूर्ति तभी होगी महत आश्रय, महान भक्त का आश्रय। ये सीक्रेट है, महान भक्त कौन है, गिरिराज गोवर्धन, तो उनका आश्रय प्राप्त करने का आज का दिन है। हाँ, गिरिराज को हमें अप्रोच करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में चर्चा करो, उनके बारे में सुनो। हाँ, और उनके लिए कई प्रेयर्स हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने गोवर्धन द्वादश 12 प्रेयर्स उनके लिए लिखी हैं, जो बहुत पावरफुल हैं। वो कहते हैं कि आप निज निकट निवासम देह गोवर्धनत्वम, हे गोवर्धन आप मुझे अपने निकट निवास दो। क्यों? क्योंकि उनके निकट निवास मिलने से कृष्ण को कभी नहीं भूलेंगे। भक्त के निकट होने से क्या होगा, कृष्ण विस्मृति नहीं होगी, असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। तो इस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन की कृपा हमें प्राप्त करनी चाहिए। श्रीमती राधिका अपने स्वयं के कार्यकलापों से यह हमें शिक्षा देती हैं कि किस प्रकार से गिरिराज की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। गिरिराज गोवर्धन की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।